फरहा के दादा हकीमुल्ला खान ने घर में मौजूद बच्चों, खवातीनों और राघव को कमरों में बंद करके सांकल लगा दी और खुद जब तक आंगन पार बाहर दरवाजे तक आते तब तक दरवाजे की थाप थपेड़ों में बदल चुकी थी, जैसे दरवाजा तोड़ ही दे रहे हों। घर वालों की जान ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। सभी को घर की औरतों से ज्यादा राघव की फिक्र थी और फरहा तो सदमे में ही आ गई थी, न तो बोल पा रही थी और न ही रो पा रही थी। बस राघव का हाथ कसकर पकड़े कोने से सटकर खड़ी हुई थी वो। हकीम साहब की पत्नी रहमानी भी हफीज साहब और उनकी बीवी रजिया के साथ खुदा से रहम की भीख मांग रहे थे। हकीम साहब घर के बुजुर्गवार थे और आज भी माशाल्लाह लंबे चौड़े और दो चार को तो यूं ही उठाकर पटक देने का मादा रखते थे। सो उन्होंने एक पिस्तौल हाथ में ले ली, जिसका लाइसेंस 2 बरस पहले ही लिया था, जब ऐसे ही हालत बावरी मस्जिद के वाकये के वक्त हो गए थे। हकीम साहब ने बहुत एहतियात से दरवाजा खोला। दरवाजे पर कुछ जाने पहचाने और कुछ अनजान से नौजवानों के गुस्से में उफनते चेहरे थे। हकीम साहब, जरा तलवारें तो दीजिए, कुछ कम पड़ गई हैं। उन नामुराद काफिरों को आज अपनी मर्दानगी दिखानी ही पड़ेगी। उन लोगों ने मुल्ला साहब की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, आगजनी भी की है। अगली गली की ताबिश की दुकान जलकर राख हो गई है। ये मोहम्मद आसिफ था, वक्फ बोर्ड का एक कारिंदा और बेहद कट्टरवादी। हकीम साहब हालांकि इस कार्रवाई के सख्त खिलाफ थे और अगर उनकी मजबूरी नहीं होती तो वो उनकी ये मांग कतई पूरी ना करते, लेकिन उन्होंने 2 तलवारें उन्हें दे दी और जल्द से किवाड़ बंद कर दिए। आधी रात होने को थी। बाहर रह रहकर चीखने चिल्लाने का शोर तूफान की तरह उठता और शांत हो जाता। हकीम साहब देर रात तक पलंग पर मसनत की टेक लगाए बैठे रहे। बाहर से गोलियों और चीख चिल्लाहटों की आवाजें आ रही थीं। फजर की नमाज का वक्त भी होने को था। अचानक उन्हें न जाने क्या सूझा, उन्होंने मोबाइल पर एक नंबर मिलाया। नजीब, तुमसे एक काम था बेटा, आ सकते हो क्या? हाँ हाँ, घर पर ही, अभी इसी वक्त, काम बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, हम जानते हैं कि हालात बहुत खराब हैं, ये भी जानते हैं कि ये कुफ्र, ये जलजला जल्दी थमने वाला नहीं है। कर्फ्यू भी लगा है, लेकिन तुम बेहद समझदार और जहीन इंसान हो, इसलिए तुम पर भरोसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम पुलिस महकमे के अफसर हो, इसलिए तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा और रोकेगा भी नहीं। अच्छा, किस इलाके में ड्यूटी है तुम्हारी? चलो ठीक है, जीप है ही तुम्हारे पास, लेकिन बेटा कोशिश करना कि अकेले ही आओ, काम कुछ ऐसा ही है। हाँ, कांस्टेबल के साथ आ सकते हो। शुक्रिया। हाँ ठीक है, आधे घंटे में आ जाओ, लेकिन बस ख्याल रखना कि सुबह होने से पहले। शुक्रिया बेटा। हकीम साहब के चेहरे पर निश्चिंतता के भाव आ गए। नजीब हकीम साहब का शागिर्द था, उसे स्कूल में हकीम साहब ने तालीम दी थी। तब से पुलिस महकमे का एक बड़ा अफसर बनने तक उसका आना जाना मुस्तकिल था। यूं भी हकीम साहब की समाज में बुजुर्गाना हैसियत थी और नजीब तो उन काबिल और समझदार शागिर्दों में से एक था जो बच्चों से लेकर बूढ़ों और औरतों को इज्जत बख्शने के लिए जाना जाता था। हकीम साहब के लिए तो मरने मिटने को तैयार। वो इस सच को गाहे बगाहे कबूल भी करता था कि समाज में उसकी जो हस्ती है, रौबदाब है, वो हकीम साहब की तालीम का ही नतीजा है। बाहर आ जाइए अब सब लोग, अब कोई डर नहीं है, हमने नजीब को बुला भेजा है, वो आने ही वाला है, अब कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। हकीम साहब ने कमरे की सांकलें खोल ली और सब लोग बाहर आ गए। बेगम, सभी को खाना परोसिए, बस इस एहतियात के साथ कि घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखे जाएं, उन्होंने अपनी बीवी रहमानी से कहा। अब आहिस्ता आहिस्ता घर से खौफ के बादल छंट रहे थे। हवेली की चारदीवारी मुस्तैद और खामोश थी, जबकि भीतर की गतिविधियों में सुगबुगाहट होने लगी थी। दमघोट सन्नाटों की दीवारें चटक रही थीं। बावर्ची खाने से धीरे धीरे खुशबुएं उड़ने लगी थीं। खवातीनों मर्दों की आवाजें भी फुसफुसाहटों के साथ नमूदार होने लगीं, हल्की फुल्की खिलखिलाहटें भी। शुक्रिया बाबा जान, हम बता नहीं सकते आज आपने हमें अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी सौगात बख्श दी है, नहीं तो न जाने क्या होता हमारे राघव को, उन लोगों को पता चल जाता ये सोचकर तो सचमुच रूह कांप जाती है। हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आपका यह एहसान, फरहा ने कहा तो हकीम साहब ने उसे गले से लगा लिया। जब तक हम जिंदा है ना बच्ची, कोई हमारी औलादों को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अब तुम्हारा और दूल्हे मियाँ का यहाँ रहना ठीक नहीं है, बंदोबस्त करवा दिया है तुम्हारे जाने का, नजीब आ रहा है, वो खुद तुम दोनों को हिफाजत से तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। जी दुरुस्त बाबा जान, फरहा ने उसी शाइस्तगी के साथ कहा, अब जल्दी जल्दी तुम लोग कुछ खा पी लो, सुबह होने में वक्त है, कल से किसी ने कुछ खाया नहीं है। अब घर जाकर तुम लोग ईद मनाना, अब्बू के घर, वहां ऐसा माहौल नहीं होगा। जी बाबा जान। रात के 3 बजने को थे जब नजीब आया। उसे हकीम साहब ने अपने कमरे में बुलवा लिया और सब बातें समझा दी। माशाल्लाह, तुम तो बड़ी हो गई हो फरहा खातून, नजीब ने फरहा को देखकर कहा तो वो शर्मा गई और मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा, आप भी तो जनाब कितने बदल गए हैं। नजीब और फरहा 10वें दर्जे तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। तय हुआ कि राघव को बतौर एहतियात नजीब खुद अपनी गाड़ी में ले जाएगा, जबकि अन्य लोग दूसरी गाड़ी में कांस्टेबल की निगरानी में जाएंगे। रात के सुन्न सन्नाटों में जीपें चल पड़ी। कुछ दूर जाकर वो अलग अलग रास्तों पर हो गईं। फरहा ने जब कांस्टेबल से पूछा तो उसने बताया कि ऐसा एहतियात के लिए किया जा रहा है। दूसरे दिन दोपहर होने को आई, उन लोगों के पहुंचने की खबर नहीं मिली। शहर भर में हड़कंप मचा हुआ था। हकीम साहब बार बार फोन मिलाते रहे, कभी नजीब को, कभी बेटी दामाद को और कभी अपने भतीजे हाफिज को, और नो रिप्लाई देखकर फिर हाथ बांधे टहलने लगते आंगन में इधर से उधर। तभी फोन की घंटी घनघना उठी। उन्होंने दौड़कर फोन उठाया। एक घबराई हुई आवाज गूंज रही थी उसमें, हकीम साहब, एक मर्द की लाश मिली है नहर के पास झाड़ियों में। लोग बाग बता रहे हैं कि किसी हिंदू की है, उम्र कोई 25-26 बरस है। किसी ने कहा कि कल रात को हकीम साहब की हवेली से 2 गाड़ियां गई थीं। हकीम साहब को लगा जैसे उनकी सांसें रुक रही हैं। बरखुरदार कौन हैं आप? खैर जो भी हैं, अल्लाह के वास्ते जरा जल्दी से पूरा वाकया बताइए। बस इतना ही जानते हैं खान साहब हम, और फोन कट गया। हकीम साहब ने जल्दी से शेरवानी और टोपी पहनी और स्कूटर उठाकर नहर की ओर चल दिए। अभी दोपहर थी और कर्फ्यू में थोड़ी देर की ढील दी गई थी। नहर उस पुराने शहर की कोई नदी रही होगी जो अब नहर कहलाती थी, और अब तो नाम ही नहर था, असल में थी अब एक गंदा मटमैला नाला जिसमें पूरे इलाके की गंदगी बहती थी। ये छोटी मोटी पहाड़ियां और झाड़ियों से घिरी हुई थी। शहर के आसपास की पथरीली और उबड़ खाबड़ जमीन पर लोग छत्तों की तरह चितराए हुए थे, आपस में बातचीत करते हुए। हकीम साहब को देखते ही उन लोगों ने उन्हें अदब से सलाम किया, फिर उस लाश के बारे में बताने लगे। कुछ दूर पर लाश पड़ी थी, उसके इर्द गिर्द कुछ पुलिस वाले खड़े थे। हकीम साहब तेजी से उस लाश की ओर गए। चेहरे पर कीचड़ और खून के धब्बे थे, शरीर के कपड़े फटे और लहूलुहान थे, चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। आशंकाएं बहुत जिद्दी और क्रूर होती हैं, न चाहते हुए भी वो मन के सुकून के किसी कोने में ठस कर बैठ जाती हैं और टीसती रहती हैं। कभी कभी तो उत्पात मचा देती हैं दिल में। घबराहट में हकीम साहब की याद करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थीं कि कल राघव ने कौन से रंग के और क्या कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी इस शंका पर नजीब की भलमनसाहत तुरंत ही अपना नर्म हाथ रख देती और हकीम साहब एक बार फिर भटक जाते सवालों के जंगल में मन ही मन। बस इतना ही पता चल पाया था कि ये कोई हिंदू था जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। फोन की घंटी बज रही थी, उनके भतीजे हाफिज का फोन था। चचा, फरहा और हम लोग तो घर पहुंच चुके हैं, लेकिन दामाद जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, वो नजीब साहब के साथ दूसरी जीप में थे। फरहा का बुरा हाल हो रहा है, रो रोकर। हकीम साहब की आशंका एक कदम और बढ़ गई और उनके हौसले कई गुना पस्त हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जनाब, अब जल्दी से घर तशरीफ ले जाएं, कर्फ्यू बंद होने का ऐलान हो चुका है, एक पुलिस वाला उनसे कह रहा था जो उनके दिल के कोहराम से पूरी तरह अनभिज्ञ था। खैर, उसके बाद हकीम साहब पुलिस चौकी, अखबार के दफ्तर, सब जगह का चक्कर लगाकर वापस घर लौटे। अफवाहों और सच्चाइयों के बीच एक खबर ये भी आकाश में धुएं की लकीर सी उठ रही थी कि मरने वाला आदमी करीमपुर के किसी घर का मेहमान था जो कल ही आया था। अब तो कोई शक नहीं रह गया था उन्हें। घर में अपनी बीवी रहमानी को उन्होंने अपना शक बताया और वो दोनों अस्पताल आ गए। लाश को फिलहाल अस्पताल के मुर्दा घर में रखा गया था। तुम यहां बैठो, डॉक्टर से मिलके आता हूं, उन्होंने पत्नी से कहा और एक केबिन में घुस गए जिसके आगे डॉक्टर रोहित बजाज का बोर्ड लगा था। डॉक्टर अधेड़ और गंभीर किस्म का आदमी था। डॉक्टर, एक लाश को लाया गया है सुबह पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, अभी सीएमओ का फोन आया था, शाम तक होगा उसका पोस्टमार्टम। कोई परिचित है आपका? डॉक्टर ने कागज पर कुछ लिखते हुए पूछा। जी हाँ, हमारा दामाद है, कल आए थे वो यहां ईद मनाने, अभी अभी शादी हुई थी। कोई लफड़ा था? हाँ। क्या, वो हिंदू था? उन दोनों ने पसंद से शादी की थी। ओह, अचानक डॉक्टर के मुंह से निकला। क्या करता था लड़का? बैंक में नौकर था, बेहद जहीन और सीधा साधा। हकीम साहब गमगीन हो उठे। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर साहब लाश देखना चाहते थे एक बार। हकीम साहब ने कुर्सी से उठते हुए डॉक्टर से कहा, सॉरी जनाब, अभी नहीं दिखा सकते आपको, पुलिस की तरफ से यह आदेश है हमें, कहकर डॉक्टर निकल गए। हकीम साहब भी बाहर निकल गए। शाम को जब हकीम दोबारा अस्पताल में आए तो बहुत अंदर की बात पता चली। वो ये थी कि उस हिंदू युवक को, जो यहां किसी के यहां मेहमान बनकर आया था, कट्टरपंथी कहकर पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था, और जब इससे भी संतुष्टि नहीं मिली उन दरिंदों को, तो उसे गोलियों से भून दिया गया, और इस पूरी घटना पर गलत रिपोर्ट जारी करने का दबाव था डॉक्टर के ऊपर। फिलहाल वो रिपोर्ट बनाकर घर चले गए हैं। हकीम साहब तो वैसे ही दुखी और परेशान थे। जब उन्होंने ये सुना तो उनका खून खौल गया। लाहौल विलाकुवत, नजीब, इतना नीच, वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। आदमी किस कदर बनावटी हो चुका है, कितना जहर भरा है उसके भीतर, और ऊपर से। उन्होंने आनंद फानन में अपने एक मित्र, जो एक स्थानीय अखबार का संपादक था, उसको फोन करके सारी घटना बताई। फिर उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में फोन करके इस घटना के बारे में जानकारी दी। अब छिपाने से भी क्या फायदा था, जब दामाद मार ही दिया गया था। लिहाजा वो पुलिस चौकी गए, वहां नजीब की नामजद रिपोर्ट लिखवाई, और उसमें यह भी कि उनका हिंदू दामाद राघव पांडे बेहद जहीन और सीधा साधा इंसान था, और पुलिस अफसर नजीब, जिस पर उन्हें बेइंतहा भरोसा था, उसी के साथ कल रात बतौर एहतियात उन्होंने अपने दामाद राघव को भेजा था, खैरियत से उसके ठिकाने पर पहुंचा देने के लिए। और उसी नजीब ने अपनी कट्टरवादिता के चलते राघव को हिंदू होने के जुर्म में मुठभेड़ का नाम देकर वहशियाना तरीके से मार दिया। इतने पर भी हकीम साहब को सुकून नहीं मिला, और अपने एक वकील मित्र के साथ वो फिर से नहर के इलाके में गए, जहां रात में उनके दामाद का कत्ल हुआ था। वहां इंसानियत का हवाला देकर उन दो चश्मदीद गवाहों को तैयार किया गवाही देने के लिए, जो पहले नानुकुर कर रहे थे, पर हकीम साहब की गुजारिश पर गवाही देने को तैयार हो गए। हकीम साहब बुरी तरह से आहत थे। एक असूची क्रूर सच्चाई उनके सामने बेशर्म सी खड़ी थी। सच यही था कि ईद मनाने आई उनकी नई ब्याहता पोती बेवा हो चुकी थी, जिसका जिम्मेदार उनका सबसे भरोसेमंद शागिर्द ही था, और वो खुद भी थे। ये सच वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। न एहतियात के तौर पर उस रात नजीब को बुलाते, न फरहा और राघव को सुरक्षित घर पहुंचवाने की बात सोचते। इससे तो अच्छा था वो दो दिन घर में ही बंद बिता देते, किसी को कानोखान खबर भी नहीं होती, और राघव की जिंदगी बच जाती। लेकिन अब ये सब सोचने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो ही गया। आज उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि पार्टीशन के वक्त बेहतर होता कि वो जिद पर ना अड़ते और पाकिस्तान चले गए होते अपनों के साथ। कम से कम अपनी जवान पोती के बेवा हो जाने के इस कलंक से तो बच जाते। उनकी बीवी रहमानी तो रो रो कर बावली हुई जा रही थी, हाय मेरी फूल सी बच्ची। खुदा उन दरिंदों को खून के आंसू रुलाए जिसने उस बच्ची का सुहाग लूट लिया, उसके बेकसूर शौहर को मौत की नींद सुला दिया। वो बौराई सी बड़बड़ा रही थी, और हकीम साहब गम की थकान के बोझ से लुटे पिटे दीवान पर निढाल पड़े थे, आंखें मीचे। या अल्लाह, बुढ़ापे में ये दिन भी देखने थे। फोन की घंटी बजी जा रही थी, दो बार पूरी घंटी बजकर बंद हो चुकी थी, तीसरी बार फिर घनघना रही थी, पर हकीम साहब को तो जैसे होश ही नहीं था। जानते थे कि राघव के बारे में पूछ रहे होंगे वो लोग, क्या जवाब देंगे वो, क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, कैसे बताएंगे उन्हें कि वो अब इस दुनिया में नहीं। फोन की घंटी लगातार बार बार बजी जा रही थी। घर में काम करने वाली नाजो ने आकर फोन का रिसीवर उठाया। हेलो, क्या आप हकीमुल्ला खान साहब के यहां से बोल रही हैं? किसी ने पूछा। जी हां, फरमाइए, क्या कहना है? जरा हकीम साहब को फोन तो दीजिए। नाजो ने कुछ देर सोफे पे निढाल पड़े हकीम साहब को देखा, और फिर उनकी बीवी रहमानी को, जो लस्त हो चुकी थीं रो रोकर, और अब आंखों को मूंदे दीवान पर पड़ी हुई थीं। जी, हकीम साहब की तबीयत नासाज है कुछ। ठीक है, उनसे कहिए फरहा का फोन था। फरहा बीवी? नाजो ने दोहराया। फरहा का नाम सुनते ही हकीम साहब उठ बैठे, नाजो से रिसीवर लेकर बहुत गमगीन से बोले, जी बिटिया, हम बोल रहे हैं आपके बाबा, हमें अफसोस है बिटिया। अरे किस बात का अफसोस बाबा जान, हमने तो आपको शुक्रिया देने के लिए फोन किया था, और ये खबर पहुंचाने के लिए कि राघव सही सलामत पहुंच गए हैं दिल्ली। नजीब को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। अल्लाह उनके खानदान को बरकत बख्शे। ईद मुबारक आप सभी को। हकीम साहब कभी अपने हाथ में कांपते फोन के रिसीवर को और कभी अपनी सिसकती हुई बीवी रहमानी को देखे जा रहे थे। वंदना शुक्ला की कहानी ईद मुबारक। कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL kathaa-paath.blogspot.in।